ओम शांति। ब्राता मोहन सिंघल भाई जी लखनऊ यूनिवर्सिटी से 1963 में स्नातक डिग्री प्राप्त किया, धनबाद इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में से 1967 में एमटेक की मास्टर डिग्री की, फिर उसके बाद 1967 में ओएनजीसी में उन्होंने 28 इयर्स तक बहुत सारे प्लांट्स में अपनी सेवाएं दी। 1996 में आपने सुपरिंटेंडिंग जियोफिजिस्ट के पद से वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेकर ब्रह्म कुमारी संस्था में समर्पित रूप में सेवा करने के लिए आप रिटायरमेंट लिए। फिर उसके बाद 1962 में आप स्नातक डिग्री के पढ़ाई के बाद प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और सक्रिय सेवाओं में जुड़े रहे। साथ ही साथ बिहार, आसाम, गुजरात में अनेक संस्थाओं की शाखाएं खोलने की निमित्त बने और आप वर्तमान समय राज्योग शिक्षा एवं शोध संस्थान की गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं। आप संस्था की मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य भी हैं। वैज्ञानिक एवं अभियान विभाग के आप अंतर्राष्ट्रीय संयोजक हैं। साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग के त्रैमासिक पत्रिका सेव न्यूज के आप संपादक हैं। आप पर्यावरण प्रदूषण जागृति अभियान का सफलपूर्वक आयोजन किया, भारत के कई राज्यों में कई मेगा प्रोग्राम्स के निर्देशक किए, भारत के कई राज्यों में साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग से 9 डिजास्टर मैनेजमेंट का सुचारू रूप से बहुत सारे अभियानों का आयोजित किया। 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ग के दौरान आपके निर्देशन में भारत के विभिन्न प्रांतों से 12 पदयात्राएं निकाली गई। उस समय आप यूथ विंग के सचिव पदरत थे। आपने यूएसए, यूके, रशिया, नेपाल, बांग्लादेश आदि की भी कई यात्राएं की और तथा अपने प्रवचनों से वहां की आत्माओं की प्रभावित किया। आपने 5 पुस्तकों को भी प्रकाशित किया है और बहुत सारे अवार्ड से भी आप सम्मानित हुए हैं। उसमें से पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए आपको 1992 में भारत सरकार के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री अर्जुन सिंह जी से आपको पर्यावरण श्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तथा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के क्षेत्र में आपको इंटरनेशनल एसोसिएशन का एजुकेटर्स फॉर वर्ल्ड पीस यूएसए तथा कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ एडल्ट यूके द्वारा 2004 में इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया। 2013 में राजस्थान की राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट आलवा द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए ग्रीन आइडल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और आपने साकार ब्रह्मा बाबा से 6-7 वर्ष का पालना भी लिया है और जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तब भी आप मधुबन में ही थे और ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण अव्यक्त कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप को देखने का भी आपको मौका मिला। अभी भाई जी आप सभी को प्रकृति जीत कैसे बने इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। सभी अभी करकल ध्वनि से भाई जी का स्वागत करें।
ओम शांति। आप सब लोग मेरे साथ मिलकर एक बार पुनः ओम शांति बोलेंगे, जैसा कि हम सब ने सुना है यज्ञ में भी पहले बोला जाता था। ओ शांति का ये महामंत्र ही हम सबको प्रकृति जीत बनाने में बहुत बहुत सहयोगी है, क्योंकि जब भी हम सब आपस में मिलते हैं, ओम शांति का उच्चारण करते हैं, तो आत्मा के स्वधर्म शांति स्वरूप में विशेष स्थित हो जाते हैं। और जितना समय तक आत्मा की इस स्थिति में रहते हैं, हम प्रकृति जीत बनने के रास्ते की ओर दो कदम और आगे बढ़ा देते हैं। बाबा ने हम सबको लक्ष्य भी दिया है विजयी बनने का, विजयमाला में पिरोने का। और जहां भी विजय होती है, जीत की बात होती है, वहां क्या होता है? खुशी होती है, उमंग, उल्लास, आनंद और एक नए स्फूर्ति का संचार हो जाता है। चाहे वो विजय किसी भी क्षेत्र में हो, स्टूडेंट्स के लिए वही विजय है जब एग्जामिनेशन में वो अच्छे मार्क से पास होता है। परिवार वालों के लिए भी विजय, अगर उनके मन में कोई बात है और वो बात सिद्ध होती है, पूर्ण होती है, उसकी प्राप्ति होती है, वो विजय का अनुभव करते हैं। और जब विजय होती है तो नेचुरली खुशी होती है। तो जब प्रकृति जीत की बात आती है, तो बाबा ने इसमें बताया है माया जीत की बात तो बाबा रोज कहते ही हैं। आज भी वरदान में क्या था? प्रकृति जीत माया जीत भव। तो संगम युग में प्रकृति जीत माया जीत भव। तो प्रकृति जीत हम कैसे बने, ये बनना सुनना समझना बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि माया जीत बनने के लिए तो हम रोज ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सभी चारों विषयों के ऊपर मुरली से भी सुनते हैं और बाबा से योग भी लगाते हैं, जीवन में धारणाएं भी करते जाते हैं, सेवा भी करते हैं, और जो हमारे पुराने स्वभाव संस्कार हैं उन पर विजय प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन जो प्रकृति है, प्रकृति शब्द के भी वास्तव में दो अर्थ बाबा ने बताए, मालूम है ना? दो शब्द, दो अर्थ कौन से है? एक प्रकृति का मतलब ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव, मानव प्रकृति। कह देते हम अक्सर करके, क्या करें, ये मेरा स्वभाव है। कोई किसी का तेज बोलने का स्वभाव होता है, किसी का कोई ऐसे संस्कार होते हैं जिसके वशीभूत वो बार बार हो जाता है, तो कह देते क्या करें, ये मेरी प्रकृति है, मेरा स्वभाव है। तो एक है मानव प्रकृति, एक है ये बाहर की प्रकृति। पांच तत्व, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये पांच तत्व हैं। और हमारा शरीर भी इन पांच तत्वों से मिलकर ही बना है। तो मानव प्रकृति का और ये बाहर की प्रकृति का बहुत गहरा संबंध है। इसीलिए इस संसार को क्या कहा जाता है, ये संसार जो है पुरुष और प्रकृति का खेल है। पुरुष और प्रकृति, पुरुष माने आत्मा, क्योंकि आत्मा पुरुषार्थ करती है, ये पुरुष पुरुषार्थ करता है, तो आत्मा और प्रकृति का ये खेल है। ये कहें या तो शरीर और आत्मा का ये संसार ये खेल है। आत्मा इस शरीर के द्वारा जो खेल खेलती है वो उसका पार्ट सदा के लिए नूंद हो जाता है। तो एक हद के सेंस में तो पुरुष और आत्मा का ये खेल है, और दूसरा जो ये बाहर तत्व जो है, पांच तत्व पूरे फैले हुए हैं, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, तो ये तत्व इसके अंदर हम सब खेल खेल रहे हैं, और परम पुरुष यानी परमात्मा भी जैसे कि इसमें आकर पार्ट बजाता है। और इसीलिए ये जो खेल है संसार का, पुरुष और प्रकृति का खेल, आत्मा परमात्मा और ये ड्रामा खेल, इसको अनादि और अविनाशी कहा जाता है। तो ये जो खेल है, इस खेल में हम सब एकदम विजयी बन जाएं, माला का मणका बन जाएं, विजय माला में पिरोए जाएं, इसके लिए ही बाबा रोज हमें पुरुषार्थ कराता है। तो इसमें विजय माला में आने के लिए ये प्रकृति जीत, यानी कि एक तो अपने स्वभाव संस्कार पुराने जो हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त करना, और दूसरा ये जो बाहर के पांच तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर भी निर्मित है, इसके ऊपर भी विजय प्राप्त करना, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया है, हमारा सारा पुरुषार्थ ही किस लिए हो रहा है, हमारा पूरा पुरुषार्थ ही उस एक क्षण के लिए हो रहा है जब हम आत्मा ये शरीर छोड़ के जाएंगे। क्योंकि गायन भी है क्या, अंत मते सो गति का, अंत में उस अंतिम एक क्षण के समय हमारी जो मति होगी, जो हमें याद होगा, जहां हमारी बुद्धि होगी वैसी ही हमारी गति हो जाएगी। और इसीलिए हम पुरुषार्थ करते जाते हैं कि जिससे कि अंत समय जब हमारे प्राण इस तन से निकले उस समय बस हमें एक बाबा की ही याद हो और कोई न हो, और बल्कि कहें कि हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ के जाएं। ये नहीं कि कोई प्राकृतिक आपदा, कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट वो हमारे शरीर छोड़ने के निमित्त बने, नहीं। अगर कोई प्राकृतिक आपदा, कहीं बहुत फ्लड आ गया, पानी आ गया, धरती हिल गई, भूचाल हुआ, बिल्डिंग जहां बैठे हैं वो गिर गई, उसके नीचे दब गए, तो ये सब तो त्राही त्राही अंत समय जब मची होगी उस समय बाबा की याद रहना बड़ा मुश्किल है। तो क्यों ना हमारा ऐसा पुरुषार्थ हो जो हम इच्छा से अपना देह त्याग करें, जैसा कि हमने देखा ब्रह्मा बाबा ने भी किया। हमारा सौभाग्य है बाबा के साथ रहने का भी, और साथ ही साथ 17 और 18 जनवरी 1969 18 जनवरी को जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो हम मधुबन में ही थे, और उन अंतिम दो दिनों में बाबा की कर्मातीत अवस्था भी देखने का मौका मिला। और जब बाबा ने शरीर छोड़ा वो भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बिल्कुल ऐसा ही अनुभव होता था, जैसे बाबा को बस पहले से ही भासना आ गई थी। हमेशा रोज तो क्लास होती है, शाम की क्लास 18 जनवरी की सुबह बाबा ने मुरली नहीं चलाई थी, क्लास में आए बाबा, बस योग कराया और फिर बाबा बीच में ऐसा गला साफ करते ऐसा करके, तो जो गीत बज रहा होता था रिकॉर्ड में बस उसको रोक दिया जाता था, योग पूरा हो जाता था और फिर बाबा और मुरली चलाते थे। तो उस बार उस दिन हमने देखा 18 जनवरी की सुबह कि कई बार हो ब्रह्मा बाबा को भी कि अब मुरली चलाएं, क्योंकि बाबा जब आते थे कुछ देर योग कराते थे थोड़ी देर और फिर उसके बाद ऐसे गला साफ करके और फिर जब इशारा हो जाता था लाल लाइट सफेद लाइट हो जाती थी उसके बाद फिर बाबा मुरली चलाते थे। लेकिन उस दिन कई बार बाबा को हो अब मुरली जैसे चलाएं, लेकिन शिव बाबा को हो कि नहीं आज बच्चों को ब्रह्मा तन के द्वारा बहुत शक्ति ही सब बच्चों में भरते हैं। हिस्ट्री हॉल तो आपने देखा है, वहां पर बाबा ने सुबह योग कराया और उसके बाद पूरा लगभग आधा पौना घंटे तक बाबा योग ही कराते रहे और उसके बाद बाबा अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग कह के चले गए। और उस दिन शाम को बाबा ने, रोज तो क्लास होती है करीब 8:45 रात्रि को, लेकिन उस दिन बाबा ने जो क्लास का कराया तो उस दिन बाबा ने पहले से ही अनाउंस करा कि भाई आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा और लगभग 7:30 के करीब ही बाबा ने क्लास में आए और उसके बाद बाबा ने क्लास कराई और बस बाबा का वो संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप वो देखने को उस दिन विशेष मिला। बाबा ने क्लास आके बैठे, बाबा क्लास कराई और हमेशा बाबा को जैसे कई बार खांसी आती थी, उम्र भी थी, ठंडी की मौसम भी थी, तो कई बार बाबा को खांसी आती थी और आपने सुना होगा मुरली में भी कई बार बाबा कहते थे शिव बाबा को हंसी में कि बाबा ये खांसी जो मेरी ये सखी है इस सखी को से मेरा पीछा छुड़ाओ। तो शिव बाबा क्या कहते थे, भई ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है, ये तो तुम्हें चुकतू करना है, इसमें बाबा क्या करेगा। तो देखो जब ब्रह्मा बाबा जिसके तन का आधार लिया शिव बाबा ने उनको भी कोई कंसेशन नहीं, तो आपको हमें या किसी को कोई और शरीर का ये हिसाब किताब का कंसेशन होगा नहीं। तो इसीलिए कोई भी शरीर का हिसाब किताब हो, कर्म बंधनों का हो, कुछ भी हो, हंसी खुशी हमें पार करते चलना है, क्योंकि जो भी कर्म किए हैं इस जन्म में या पूरे 84 जन्मों में, विशेष करके पिछले 63 जन्मों में, उनका हिसाब किताब तो हमें चुकतू करना ही है। तो एक तो ये देखा, क्योंकि बाबा हमेशा अक्सर कहते थे हमारी ऐसी आंतरिक स्थिति हो कि बाहर की परिस्थिति को बदलते हैं। तो बाबा का हम देखते थे कई बार बाबा को ना खांसी आती थी, जैसे बस लगता था जैसे बाबा को बहुत कष्ट हो रहा है और कई बार आंख भी जैसे गीली जैसी लगती थी, ऐसे हुई, लेकिन बस दूसरे ही क्षण बाबा के पास यहाँ ट्रांसलाइट का पिक्चर रखा रहता था श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का, तो बस बाबा देखते थे देखो बच्चे ये पुराना शरीर है, अभी इसमें इतनी व्याधि है, खांसी है, ये तकलीफ है, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा मिजनू कृष्ण बनेगा, बस कितना कैसी दुनिया होगी, कोई भी तकलीफ नहीं, कोई भी शारीरिक व्याधि नहीं, ऐसा कह के बाबा उस बाह्य परिस्थिति को, खांसी की परिस्थिति को अपनी आंतरिक स्थिति से बदल देता था और थोड़े बस कुछ क्षणों में ही वो खांसी के ऊपर विजय प्राप्त हो जाती थी और फिर बाबा पूरी की पूरी मुरली चला देते थे। तो बाबा अभी यही चाहता है कि हमारी आंतरिक स्थिति इतनी शक्तिशाली हो कि बाह्य स्थिति को हम बदल सके। अभी तो उल्टा है कि बाह्य परिस्थिति जैसी होती है वैसे हमारी आंतरिक स्थिति हो जाती है। मानो किसी के कोई शमशान घाट में गए, किसी के मृत्यु पर गए, तो वहां पर वैराग्य की भावना होती है तो बहुत शांति सी होती है, तो उस समय हमें भी वैराग्य थोड़े समय के लिए आ जाता है, हमारी आंतरिक स्थिति भी वैराग्य की हो जाती है। यानी बाहर की स्थिति हमारी अंदर की स्थिति को प्रभावित करती है। इसके विपरीत अगर कोई ऐसा फंक्शन का कार्यक्रम है, शादी का है, कोई दूसरा, और बाहर जैसे नाच गाना, खुशी, उमंग, मौज है, वैसे ही हमारी आंतरिक स्थिति हो जाती है। लेकिन बाबा चाहता है कि हमारी अंदर की स्थिति इतनी शक्तिशाली हो कि बाहर की परिस्थिति को हम बदल सकें, तो हमारी असली अर्थों में अंतमति सोगति हो जाएगी, हम विजयमाला का मड़का बन सकेंगे। क्योंकि बाहर की परिस्थिति जितनी हलचल वाली हो, बाबा ने कहा है, बहुत हलचल वाली होगी, लेकिन अति हलचल की स्थिति में भी हमारी आंतरिक स्थिति अति अचल रहे, उसके अंदर बाहर की हलचल का प्रभाव हमारी अंदर की स्थिति पर न आए, वो इतनी अचल रहे कि बाहर की हलचल को भी अचलता में परिवर्तित कर दे। ये है बाबा ने कहा विजयमाला के जो मड़के हैं उनका लक्षण। हम सब भी तो विजयमाला के मणके बनने के पुरुषार्थी हैं, इसलिए हम सबको भी ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ऐसे हम प्रकृति जीत बन जाएं, उसके लिए आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। तो बाबा का भी ये देखा, बाबा ने मुरली चलाई अपनी 18 जनवरी की रात्रि को, और अक्सर हम हमेशा देखते थे कि पहले जब बाबा से हम लोग 62-63 में मिलते थे, बाबा सारा हालचाल पूछते थे और सुन करके उसका समाधान देते थे अच्छी तरह, 10-15 मिनट भी सुनते थे बाबा। फिर धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता जा रहा था, 1966-67 वगैरह में हमने देखा कि बाबा के पास जाते थे कि बाबा को ये बात बताएंगे, ये सेवा का समाचार सुनाएंगे, ये जो पेपर है इसके बाबत पूछेंगे, लेकिन बस बाबा के सम्मुख गए और बस एक दो लाइन ही बोली, 2-3 लाइन, बाबा कहते थे बच्चे बाबा समझ गया, बाबा अभी तो हमने बोलना ही शुरू किया है, अभी तो पूरी बात बताई नहीं, बाबा कहते नहीं नहीं बच्चे बाबा समझ गया, और कुछ लाइनों में ही बाबा वास्तव में उस समस्या को समझ करके उसका समाधान दे देते थे। लेकिन जब हम 17-18 जनवरी 1969 को मिले तो उस समय हमने क्या देखा कि बाबा से लगभग 6-7 बार मिलने का उन 2 दिनों में मौका मिला, 17 जनवरी और 18 जनवरी को लगभग 6-7 बार अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान पर। लेकिन एक बड़ी वंडर बात देखी कि बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा दृष्टि देते थे और हम सोचते थे अब हम बाबा को ये बात बोलें, बाबा मन की बात को पढ़ करके परख करके प्रश्न भी बता देते थे कि हम क्या प्रश्न लेके आए हैं और उसका समाधान भी बता देते थे। हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और ऐसा जब बहुत बार हुआ बड़ा आश्चर्य लगता था कैसे बाबा अंदर की बात को एकदम समझ गया। लेकिन बाबा हम बच्चों से भी यही चाहता है कि हम भी अपनी ऐसी स्थिति अब बनाएं कि हमारे सामने बहुत आत्माएं आएंगी, भक्त आत्माएं आएंगी, विश्व की अनेक आत्माएं अपने बहुत प्रश्नों को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर, समस्याओं को लेकर, और समय नहीं होगा उन्हें बताने का। लेकिन हम, हमारी आंतरिक स्थिति ऐसी हो हम उनकी बात को समझ जाएं, तुरंत पढ़ लें और उसका समाधान दे सके। ये बाबा का प्रत्यक्ष हमने देखा, मन के भाव को पूरी तरह जान लेना। बाद में हमने एक बार बड़ी दीदी जी से पूछा था, मनमोहनी दीदी जी से, कि दीदी ये कैसे होता है बाबा का, तो बहुत अच्छा बताया था उन्होंने। कहा देखो, जब आत्मा कर्मातीत स्थिति के निकट होती है तो क्या होता है, उसका मन के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण हो जाता है। मन जीते जगत जीते, मन को संपूर्ण संकल्पों के ऊपर उसका पूरा नियंत्रण हो जाता है, और जब अपने संकल्पों पर पूरा नियंत्रण होता है तो बाहर के सामने आए व्यक्ति के संकल्प को वो सहज ही पढ़ सकती है आत्मा। जैसे मानो पानी है, बिल्कुल बिना हलचल का है, और पानी में हम अपनी छवि देखना चाहें, साफ है, अचल है, एकदम छवि हमें स्पष्ट दिखाई देगी। लेकिन पानी में एक पत्थर फेंक दो, कंकड़ फेंक दो, तो हलचल होगी, लहरें पैदा होंगी, तो हम अपनी छवि को भी, अपने रूप को भी नहीं देख सकेंगे स्पष्ट। ऐसे ही अगर हमारे अपने संकल्प नहीं होंगे, कोई हलचल नहीं होगी, तो दूसरा जो व्यक्ति सम्मुख आएगा उसके संकल्पों को तुरंत पढ़ के उसके समाधान सहज ही दे सकेंगे। तो ये जो है ना, मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये उसका लक्षण है। और जो मन को, क्योंकि मन है हमारी आंतरिक प्रकृति, तो प्रकृति जीत की जब बात हो रही है तो एक है ये आंतरिक प्रकृति को जीतना, मन जीतना इसके ऊपर। और ये कब होगा, जब हम इच्छा मात्रम अविद्या होते जाएंगे, इच्छाओं पर भी हमारा नियंत्रण होता जाएगा। आज बाबा इस बात के ऊपर ही विशेष जोर देता है, बस बाबा आया है सब कुछ देने के लिए, सर्व इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, तो बस कोई और इच्छा ना हो, बस बाबा हम आपके, आप हमारे, हमारा ये लक्ष्य है। लक्षण बुद्धि में पूरा क्लियर रहेंगे लक्ष्य, तो लक्षण वही आते जाएंगे और हम आगे सफलता की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो एक तो ये मन की प्रकृति को बाबा ने कैसे जीता, और वो अंतिम दिन भी बिल्कुल स्पष्ट हो रहा था। नॉर्मल केस में बाबा को कई बार खांसी आ जाती है थी, लेकिन उस दिन देखा, 18 जनवरी की रात्रि की मुरली क्लास आप सुनो, वो सीडी मिलती है, ऑडियो कैसेट, एक बार भी बाबा को उस खांसी नहीं आई। और वो इस बात का प्रतीक है कि कर्म भोग, शरीर के जो भी कर्म भोग हैं, उनके ऊपर आत्मा ने संपूर्ण रीति से जैसे विजय प्राप्त कर ली थी, कर्म भोगों के ऊपर योग बल ने जैसे विजय प्राप्त कर ली, और वो इस बात का ही प्रतीक है जैसे संपूर्णता का, अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति का, कर्मातीत स्थिति का। तो एक तो है ये मन की प्रकृति, चलो ये तो हमारा रोज का पुरुषार्थ हो ही रहा है, मुरली सुन रहे हैं और मन को जीतने का। लेकिन बाहर की प्रकृति, ये जो पांच तत्व हैं, ये तो हमारे हाथ में है नहीं ना, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, इन पर हम कैसे विजय प्राप्त करें, उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छा बताया है। क्योंकि अंत मति सो गति का गायन है, अंत में ये तत्व भी हमारे पूरे सहयोगी बन जाए। बाबा ने ये कहा है, जितना जितना आपका बुद्धि योग जो है वो वॉइसलेस होता जाएगा, उसके अंदर कोई भी विकारी संकल्प भी नहीं होंगे, उतना उतना हम जो बाबा की प्रेरणाएं हैं उनको खींच सकेंगे। क्योंकि अंत समय क्या होगा, ये जितने भी इक्विपमेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट है, मोबाइल है, टेलीफोन है, दूसरे टीवी है, कोई भी रेडियो है, कोई भी काम नहीं करेंगे। वायरलेस इक्विपमेंट जितने हैं ये कोई काम नहीं करेंगे, ये वॉइस लेस, ये बुद्धि ही काम करेगी। और समय पर टचिंग होगी, और बाबा ने ये भी कहा है आपके पैर ऑटोमेटिकली उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। ऑटोमेटिकली सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी इधर जाऊं या इधर जाऊं, ऐसा करूं या ऐसा करूं, नहीं, ऑटोमेटिकली हमारे पैर उधर ही बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, और मक्खन से बाल की तरह बाबा जैसे हमें मुक्त कर देगा। लेकिन इसके लिए बाबा ने क्या कहा है कंडीशन, कि ये जो बाहर की प्रकृति है ना, ये भी तब सहयोग देगी, शरीर भी तो बाहर की प्रकृति है पांच तत्व, ये भी तब सहयोग देगी जब इस प्रकृति के तत्वों को हम अपना मित्र बना लेंगे। अभी क्या है, ये प्रकृति के तत्व जैसे ना, बहुत प्रकृति के तत्वों का दोहन किया है मनुष्य ने, इसलिए प्रकृति के तत्व भी जैसे हमारे मित्र नहीं रहे हैं। देखो जब चाहे पानी बाढ़ आ जाती है, जल में सुनामी आ जाती है, जब चाहे पृथ्वी में हलचल हो जाती है, एकदम हिलती है पृथ्वी, भूचाल आ जाता है, भूकंप हो जाता है, हजारों लाखों लोग मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो धरती है, जल है, अग्नि है, आकाश है, वायु है, ये तत्व जो है, ये तत्व हमारे जो अंदर के प्रकृति है उसके विपरीत है। हमारी अंदर की प्रकृति एक है, बाहर की प्रकृति एक है, दोनों में सद्भावना नहीं रही है। और बाबा ने बताया है जब हमारी प्रकृति अंदर की इतनी अच्छी होती है सतयुग में, हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होते हैं, अंदर की प्रकृति पूरे वश में होती है, मन वश में होता है, तो बाहर की प्रकृति भी वश में है। वहाँ कभी भूचाल नहीं आता, बाढ़ नहीं होती, कभी साइक्लोन नहीं होता, कोई भी बाहर की प्रकृति की हलचल नहीं, वो भी सदा बाहरी मौसम, बहुत सुखदायी प्रकृति होती है। और बाबा ने ये कैसे जीता, उस दिन देखो 18 जनवरी को बाबा ने रात्रि क्लास करी, चला के बाबा बाहर गए, और अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ऐसा बाबा ने कहा बड़े प्रेम से हिला के। ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं बोले थे, उस दिन ही बोले, और बस बाबा को आभास हो गया था इच्छा मृत्यु, जो भीष्म पिता के मह का गायन है महाभारत में, कि उसको भी ये इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब तुम चाहोगे उस समय शरीर छोड़ोगे। हम सब भी ब्रह्मा बाबा के ही तो फॉलोअर हैं, ब्रह्मा बाबा को भी यही बाबा ने उस दिन कहा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, इतने 33 साल में बाबा ने कभी नहीं बोला। और उसके बाद बाबा गए कमरे में, और बस दादी जी के हाथ में हाथ, नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने छुट्टी ले दी, इच्छा मृत्यु। तो उसका प्रमाण क्या, कि बाबा का शरीर जो है, 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ा, रात को पूरा 18 जनवरी की रात रखा रहा, 19 जनवरी का सारा दिन, 19 का रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 तारीख को बाबा का संस्कार किया गया, दोपहर के भी बाद, 2 बजे के बाद। लेकिन बाबा का शरीर वैसे ही चमकता रहा, कोई दुर्गंध नहीं आई, कोई काला नहीं पड़ा। और शरीर, सबसे बड़ी बात, आत्मा जब शरीर छोड़ के चली जाती है तो शरीर एकदम अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है, उसमें हलचल जैसे नहीं हो सकती। लेकिन 21 तारीख को हम सब भाइयों ने बाबा को जब स्नान वगैरह भी कराया, और देखा काफी हद तक शरीर के अंदर जैसे फ्लेक्सिबिलिटी भी थी। और जो इस बात का प्रतीक है, क्या डॉक्टर लोग तो आज भी इस बात को नहीं मानते, लेकिन काफी जैसे ये कि पांच तत्वों के ऊपर भी, प्रकृति के ऊपर भी बाबा ने इतनी विजय प्राप्त कर ली थी कि ये पांच तत्व ने भी बाबा का अंतिम समय तक पूरा सहयोग किया। तो हम सब भी, बाबा ने कहा है ना, हम सब ब्रह्मा कुमार तो बन गए, अब क्या करना है, ब्रह्मा के कदम पर कदम रख के चलते हुए और क्या करना है, हैं? बाबा ने कहा जो बाबा ने किया कहा वैसा ही हमें आगे करते चलना है। तो जब ब्रह्मा बाबा प्रकृति जीत बन गए, वो तो हमारे आपके तरह ही साधारण व्यक्तित्व था ना पहले, लेकिन पुरुषार्थ से बाबा ऐसा संपूर्ण बन गए, तो ऐसे हमें भी प्रकृति जीत बनना है। और उसके लिए क्या करना है, प्रकृति के तत्वों से हमें मित्रता कर लेनी है। कैसे, उसका भाव क्या है प्रकृति के तत्वों से, जैसे आपस में दो मित्र होते हैं ना, मित्र होंगे तो मित्र हमेशा मित्र का सहयोग करेगा कोई भी आवश्यकता के समय, तकलीफ के समय, और उसको मदद करेगा। ऐसे ये जल तत्व, अग्नि, वायु, और वो कौन, मित्रता किनके बीच में होती है, किनके बीच में मित्रता ज्यादा अच्छी होती है, जिनके संस्कार एक दूसरे से मिलते हैं काफी हद तक। रोज क्लास भी होती है, आपने देखा होगा, बस क्लास हुई सेंटर पे, बाहर जाते हैं आपस में दो दो चार चार का कोई ग्रुप, जो खास आपस में मित्रता भाव होती है, दो चार बातों का एक्सचेंज करेंगे, फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। उनके आपस में स्वभाव संस्कार आपस में ज्यादा मिलते हैं। ऐसे ही हम इन तत्वों को अपना मित्र बना लें, जिससे ये मित्र तत्व हमें समय पर पूरा सहयोग दें, हमारे प्राण लेने के निमित्त न बने, हमें कष्ट देने के निमित्त न बने। तो जल तत्व मानो, बाबा ने कहा है ना, बंबई भी जलमयी हो जाएगी, जल तत्व है। जल में सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है, कौन सा गुण है, शीतलता का, वो भी है जल में। एक सबसे बड़ा गुण है एडजस्टमेंट का, फ्लेक्सिबिलिटी का। तो देखो जैसे जल को ना, इस अभी इस ग्लास में लिया है तो ग्लास में सेट हो गया जल, अभी कटोरी में लो कटोरी में सेट हो जाएगा, चम्मच में लो चम्मच में, थाली में लो थाली में, इतना एडजस्टमेंट का गुण है, वो हरेक से एडजस्ट होके चल सकता है। ऐसे अगर हमने भी अपना जल का ये गुण धारण किया होगा, हर आत्मा से हम एडजस्ट होके चल सके, हमारे कोई कड़े संस्कार ना हो जो किसी आत्मा से टकराव में आए, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी का अगर हमारा गुण होगा और एडजस्ट का, तो क्या होगा, ये जल तत्व हमारा जैसे मित्र बन गया। क्योंकि जल का संस्कार ही वो है, हमने भी वही संस्कार धारण करा, इसका मतलब जल को मित्र बना लिया अपना। तो उससे क्या होगा, अंत समय में चाहे जितनी भी फ्लड हो, बाढ़ हो, सुनामी हो, कुछ हो, जल हमारे दुख और मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। ऐसे ही जल में शीतलता का गुण होता है, ठंडा ना होता है तो बस आग पर रखो शीतल ही उबल जाएगा, लेकिन अगर उसको अपने नेचुरल स्वरूप में लाना है तो बस आग से उतार के रख दो, थोड़ी देर बाद अपने आप ही अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाएगा। ऐसे ये भी हम जल का गुण धारण कर लें, कभी मानो किसी परिस्थिति के कारण, पुराने संस्कार के कारण हमें क्रोध आ गया, कोई ईर्ष्या हो गई, अहंकार हुई, लेकिन थोड़े समय में, मतलब हम उस जैसे विकार के वशीभूत हो गए, लेकिन थोड़े समय में ही हमें ख्याल आया कि नहीं ये तो नहीं होना चाहिए, ज्ञान तो आत्मा में है, तो उस परिस्थिति से हमने अपने को अगर अलग कर लिया तो थोड़े समय बाद हम ओरिजिनली फिर आत्मा शांत स्वरूप है उस स्थिति में आ जाएंगे। आत्मा का जो गुण है उसमें जैसे जल का गर्म होगा, उबला हुआ होगा, उंगली डालेंगे वो जला देगा, लेकिन उतार के रख दिया फिर से शीतलता के गुण में आ जाएगा। ऐसी कभी मानो हम क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा के वशीभूत हो गए, लेकिन तुरंत ही जागृति आई, हमने उससे संकल्प से अपने को अलग कर लिया, शक्तिशाली सोमान में स्थित हुए, फिर से हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाएंगे। इसका मतलब जल का वो हमने गुण धारण कर लिया। और जल में क्या गुण होता है? जल माने बहता वाला, बहता है जल तो शुद्ध मानते हैं। जल के रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर भी आ गया, रुकावट भी आ गई, तो भी जल अपना रास्ता घूम घाम के बना लेगा, निकल जाएगा, वो रुकेगा नहीं। ऐसी हमारे सामने भी अगर कभी कोई परिस्थिति आती है तो हम अपना रास्ता बनाकर आगे बढ़ते चले, उसको बहाना न दे, वो बात को ये न कहें इस कारण से मेरी प्रोग्रेस रुक गई, मेरा आगे बढ़ना रुक गया, नहीं। उसका तो काम है आना, बाबा ने कहा बात का काम है आना, परिस्थिति का काम है आना, आपका काम है अपना रास्ता बना के आगे बढ़ता चले। पत्थर है, बाबा ने कहा उसको तोड़ने में नहीं लग जाओ, ये परिस्थिति जब बदले तो मैं आगे जाऊं, नहीं, परिस्थिति है लेकिन हम अपना रास्ता ढूंढ के आगे बढ़ते चले। ये जल का गुण होता है। और क्या, सुबह रात को सो के उठते हैं, अमृत वेले योग में आना होता है, क्या करते हैं भाई, गए आंखों पर थोड़ा मुंह धोया, आंख पे छींटे वगैरह दी, जल फ्रेश कर देता है, एकदम ताजा कर देता है। ऐसे ही हमारी स्थिति ऐसी हो जाए कि कोई भी आत्मा हमारे सम्मुख आए वो ताजगी का अनुभव करे। बाबा के सम्मुख जब जाते थे मन में बहुत प्रसन्न होंगे, बस बाबा के सम्मुख जाते ही सब भूल जाता था, एकदम फ्रेश अनुभव करते थे। दादियों के सम्मुख भी अभी जब जाते हैं, कितनी बार ऐसा होता है, कई बहुत बड़ी बात हम सोचेंगे ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन दादी एक शब्द में ही उन सब का समाधान कर देते हैं। तो इसीलिए ये जल के जो गुण हैं, ये जितना जितना हम धारण करते चलेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी का, आगे बढ़ने का, फ्रेशनेस का, शीतलता का आदि आदि, तो क्या होगा, जल जितना सुनामी आएगी, बाढ़ आएगा, कुछ भी होगा, जल हमारे दुख, अशांति, मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। ये प्रकृति जीत में एक तत्व की बात। ऐसे एक बाबा ने कहा है पृथ्वी तत्व है, वो भी बहुत बड़े विनाश का कारण बनेगा, अंत समय में बहुत धरती बहुत हिलेगी, भूचाल आएंगे, भूकंप आएंगे। तो धरती के गुण भी हम अपने में धारण करते चले तो धरती को अपना मित्र बना लेंगे, जैसे जल को बनाया। तो पृथ्वी का कौन सा गुण है, कौन से गुण है, हाँ? सहनशीलता, हाँ, ये भी बहुत अच्छा गुण है पृथ्वी का, लेकिन उससे भी बड़ा गुण है पृथ्वी का दातापन का। पृथ्वी हमेशा देती है। देखो एक बीज बो दो पृथ्वी में, पूरा पेड़ निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे, कितने फल हो जाएंगे, एक बीज से ही हजारों बीज पैदा। ऐसी हमारे में भी दातापन की भावना हो, हमारे सम्मुख जो भी आए वो ये महसूस करे कि मैं इनसे भरपूर होके जा रहा हूं, हम देते चले। कोई स्थूल चीज देने की बात नहीं, उसकी तो लिमिटेशन हो सकती है, मर्यादा हो सकती है, भाई किसी को खाना देना है, कपड़ा देना है, पैसा देना है, कोई आवश्यकता की चीज, वो स्थूल वो नहीं, बल्कि प्रेम, स्नेह, सद्भावना, आदर, सत्कार, उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, इनमें कोई खर्च तो होता नहीं। तो ये हम दाता, इन चीजों के भंडार बन जाए, हमारे सम्मुख जो आए वो ये अनुभव करके जाए कि हाँ इनसे जितना स्नेह प्यार मिल रहा है इतना तो और किसी से भी नहीं मिल रहा है। तो जब ऐसा अनुभव होता है, कोई भी अनुभव करेगा, हम में दातापन का गुण भरपूर, पृथ्वी का ये गुण हमने अपने में धारण कर लिया। पृथ्वी दाता है ना, देखो पृथ्वी से क्या नहीं मिलता, अनाज मिलता है, फल फूल पेट्रोल सब तेल आदि सारी चीज धरती से मिलती है पृथ्वी से। ऐसे हम पृथ्वी की तरह दाता बनते चलेंगे, पृथ्वी की तरह सहनशीलता का गुण, कोई भी बात आए बस उसको सहन करके बदल दें उस बात को। बाबा ने कहा जितना भी जितना सहन करते चलते हैं ना उतना बहुत महान देवी या देवता बनते चलते हैं। कुछ समय की बस इस समय की बात है। तो ये जो है पृथ्वी का गुण दातापन का है, धरती को इसीलिए माँ बोलते हैं, धरती माता। क्यों? माँ के अंदर वात्सल्य होता है, प्यार होता है, त्याग होता है, सेवा की भावना होती है। तो ये माँ के गुण धरती माँ के, भले हम पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, लेकिन जब पृथ्वी की बात आती है और पृथ्वी से संस्कार मिलाने की, तो हमें ये धरती माता के गुण गाते हैं। और धरती देखो कितना अपने बच्चे का माता होती है, कितना ख्याल करती है ना? बच्चा नटखट भी होता है, थोड़ा उसे फटकार भी लगा देगी, लेकिन अंदर वात्सल्य होता है कि ये गलत बात से बच्चा दूर हो जाए। तो इसीलिए नटखट बच्चे को आंख भी दिखाती है, थोड़ा मारेगी भी। ऐसी पृथ्वी भी ना बीच बीच में हमें चेतावनी देती है, देखो तुम्हारे अंदर सहनशीलता नहीं है, तुम्हारे अंदर ये संस्कार दातापन का नहीं है, इसीलिए धरती बीच बीच में हिलती है, कभी भूचाल आ जाता है, कभी एकदम ऐसा परिस्थिति हो जाती है धरती के कारण मनुष्य कष्ट में आ जाते हैं। तो इसीलिए धरती के ये सहनशीलता का गुण हो, चाहे दातापन का गुण हो, चाहे माँ का प्यार वात्सल्य और वो भावना हो, उन सब को जितना जितना हम धारण करते जाएंगे, तो धरती में चाहे जितने भूकंप आए, जितनी तेज धरती हिले, अनेक जगह चाहे बहुत विनाश हो जाए, लेकिन हमारा बाल बांका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि धरती को हमने अपना मित्र बना लिया और ऑटोमेटिकली हमारे पैर उस समय उधर बढ़ेंगे, बाबा ने कहा है, जहां पर सेफ्टी होगी, सुरक्षा होगी। क्योंकि बाबा बंधा है, धरती मित्र होने के नाते बंधी हुई है हमें, ऐसा बनाने के लिए, ऐसा बताने के लिए कि हाँ अब तुम ये गुण धारण करो, ये चीज धारण करो, तो ये इस रीति से तुम सदा सेफ्टी रहेगी। बहुत अनेक गुण है, आप निकालोगे धरती के अंदर कितने प्रकार के गुण हैं। तो लेकिन सबसे बड़ा ये दातापन का, हम देते चले, हमारे सामने जो आए वो भरपूर होके जाए इन चीजों में जिसमें कोई खर्चा ही नहीं होता। ये सब चीजें बाबा से अनुभव होती थी। बस आओ जो संकल्प लेके आते हैं तुरंत, मैं बताता हूँ 18 जनवरी की रात्रि क्लास में हम बाबा के सम्मुख बैठे हुए थे, बाबा क्लास करा रहे थे, हमारे मन में आया तुरंत ही कि बाबा कुछ बोले हमारे लिए। बस जैसे अभी भी अव्यक्त बाप दादा आते हैं ना, तो किन्हीं के मन में होता हमें भी ऊपर स्टेज पर जाने का चांस मिल जाए, बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, बाबा की दृष्टि मिल जाए। ऐसे ही जब नए होते हैं, साकार बाबा से मिलने आते थे, बस जितनी बार बाबा से मिलो दिल भरता ही नहीं था, बस फिर मिले और मिले, बाबा की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। तो हम बैठे थे, हमारे मन में संकल्प आया और तुरंत ही बाबा को जैसे संकल्प पहुंचा और बाबा ने नाम लेकर के कुछ महावाक्य उच्चार दिए जो आज तक भी हमारे लिए मार्ग प्रदर्शना बने हुए हैं। तो ये बात है कि हमारे मन के अंदर संकल्पों के ऊपर हमारा ऐसा नियंत्रण हो, जो कहा जाता है ना देवताओं तक भक्त के संकल्प पहुंचते थे, बस देवता तो इतना ही कहता था तथास्तु बस, और भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती थी। तो इसी तरह वायु का क्या गुण है? वायु का गुण है हल्कापन का, पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है, वायु चीज को ऊपर उठाती है हल्का। तो वायु बहुत बड़े बड़े साइक्लोन आते हैं, अभी भी थोड़े दिन पहले हुड हुड करके साइक्लोन विशाखापट्टनम साइड में आया, और बहुत कैटरीना या लैला या कई प्रकार के साइक्लोन तूफान वायु इतना 100 200 300 किलोमीटर की रफ्तार से बहती है, बहुत बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ लेती है, मृत्यु का कारण बन जाती है। तो बाबा ने कहा है अगर वायु का हमने कौन सा गुण, हल्केपन का गुण, हर परिस्थिति में हम हल्के रहे, भारी ना। कई बार कोई ऐसी संबंधों में कटुता होती है, कोई परिस्थिति ऐसी आ गई भारी हो जाते हैं, नहीं, बाबा ने कहा वायु की तरह हल्के रहो। और दूसरा, वायु में क्या गुण होता है, वायु गतिशील होती है, बस वातावरण में वायु है बह रही है। वायु का अपना कोई गंध नहीं होती, लेकिन कोई दुर्गंध से पास हुई या सुगंध से पास हुई, वही दुर्गंध या सुगंध को लेती हुई वायु चलती रहती है। तो ऐसे ही हम भी ना साक्षी हो, सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति हानि लाभ उन सब में जैसे साक्षी होकर के चलते रहे, तो हम इस परिस्थिति में हर परिस्थिति में हल्के होकर के हम सदा चलते रहे। वायु का यही गुण है। देखो शरीर को बाहर वायु इतनी है, लेकिन शरीर लेता उतनी वायु है जितनी जरूरत होती है, ली श्वास लिया निकाल दिया। इस प्रकार से ऐसा ही हमारा भी स्वभाव संस्कार हो, जितनी जीवन की आवश्यकताएं हो वो ही हम ज्यादातर करके लें स्वीकार, नहीं तो आज मनुष्य का स्वभाव है बहुत चीजों का संग्रह करके इकट्ठी करता जाता है, समय पर काम आएंगे, समय पर ये, समय पर आवश्यकता अनुसार कुछ रखना है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर होता है तो अंत समय में जब प्राण निकलेंगे तो वो ही व्यक्ति वस्तु वैभव उन तरफ बुद्धि चली जाएगी, और जो अंत मते सोगते हमारी इच्छा अनुसार नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता है वायु से ये भी गुण ले, जितनी जैसे आवश्यकता है शरीर को वो अपरिग्रह बोलते हैं, संग्रह न कम से कम न करने की बात। ये वायु का गुण है हल्के होकर चलते रहे। और आकाश का क्या गुण है, हा? आकाश देहत का है, विशाल है। ऐसे ही विशालता हमारे हृदय में हो, और महान आत्माओं के में कई गुण होते हैं लेकिन सबसे बड़ा गुण होता है विशालता का, क्षमा भाव का। बस किसी की अगर गलती भी देखी उसको दिल में न रख के उसको क्षमा करते चले, और उससे क्या होता है, क्षमा भाव। क्षमा भाव अगर हमारे मन में होगा, वो किसी की बात को दिल में नहीं रखा होगा ना, तो वो व्यक्ति बार बार कोई घृणा ईर्ष्या या अति लगाव अति झुकाव उस चीज में हम उस चीज के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। न तो अति लगाव झुकाव होगा न घृणा की भाव, याद ही वो व्यक्ति आता या तो बहुत प्रेम भाव हो या बहुत घृणा भाव हो। तो इसीलिए बाबा ने कहा है आकाश की तरह विशाल बनो, किसी की भी कोई बात को अंदर स्थान। और ये कब होगा, आकाश में भी ना देखो सैटेलाइट वैज्ञानिकों ने छोड़े हुए हैं, और उपग्रह जो होते हैं, और वो उपग्रह की वजह से हम मोबाइल से बात कर सकते हैं किसी से, टीवी का दृश्य कहीं से कहीं देख सकते हैं, दुनिया के किसी कोने का रेडियो की कोई बात सुन सकते हैं, क्यों, कम्युनिकेशन इसलिए स्थापित है पूरी दुनिया से क्योंकि आकाश में ऐसे सैटेलाइट छोड़े हुए हैं। ऐसे ही हमारा कम्युनिकेशन विश्व की हरेक आत्मा से हो, बाबा चाहता है, बाबा कहता है आप विश्व महाराजन विश्व महारानी हो, तो इस कारण से बनने वाले हो तो क्या होना चाहिए, आपका संबंध हर आत्मा से होना चाहिए। जैसे घर का बड़ा होता है, घर के प्रत्येक व्यक्ति से उसका संबंध होता है, जानकारी होती है। ऐसे जो राजा होता है उसका अपनी प्रजा के प्रति पूरा उसका ज्ञान होता है, क्या है मेरी प्रजा, किसको क्या आवश्यकता है, हम भी तो विश्व महाराजन बनने वाले हैं, तो विश्व की एक एक आत्मा से हमारा संबंध संपर्क हो, और वो तब होगा कब हमारा कम्युनिकेशन, हमारी बोलचाल उनके साथ हो, अर्थात हमारा हर आत्मा के साथ। अब हरेक के साथ हम सम्मुख तो जा नहीं सकते, मिल नहीं सकते, इसीलिए बाबा ने कहा है अमृत वेले उठकर विश्व की समस्त आत्माओं को योगदान करो, शक्ति दान करो, सकाश दो। उन आत्माओं से मानसिक रीति से हम इतना निकट आ जाएं कि बस हमें लगे, उन्हें लगे कि हाँ ये ही मेरे इष्ट देव है, ये ही मेरी इष्ट देवियां हैं। मानसिक रीति से हम उनके निकट हों तो ये, अभी तो क्या होता है जिनसे हमारे स्वभाव बहुत अच्छे मेल जोल होता है तो उनसे हम काफी देर तक बात करते हैं, मिलते हैं, सामने भी आते हैं प्रेम से, और जिनसे उतने अच्छे संबंध नहीं होते तो अगर सामने से भी कोई आता है ना, हम नजर बचा के निकल जाते हैं, बात करना अवॉइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन उनके साथ हमारा हृदय के भाव उनसे मिले हुए नहीं है। बाबा ये चाहता है सृष्टि की समस्त आत्माओं से एक भी आत्मा ना हो, और भाव क्यों नहीं मिले होते? क्योंकि उसकी कोई ना कोई कमी कमजोरी, उसका अत्याचार या कोई बात है वो हमारे दिल में बैठा हुआ होता है, इसलिए। और वो क्यों बैठा होता है? क्योंकि हम उसको क्षमा नहीं कर पाए, माफ नहीं कर पाए, तो इसलिए आवश्यकता है इस क्षमा भाव को भी धारण करने की। और जितना ये क्षमा भाव धारण होता जाएगा उतना उतना आकाश की तरह विशालता आती जाएगी, और उस तत्व तो क्या होगा, विनाश के समय आकाश मार्ग से आने वाली जो भी आपदा होगी, कौन से रॉकेट मिसाइल बम है या क्लाउड बर्स्ट है, आजकल देखते हैं बादल फट जाते हैं, इतना पानी बरस जाता है कुछ मिनटों में ही कि सब कुछ बहा के ले जाता है, मृत्यु का कारण बन जाता है। तो वो आकाश मार्ग की कोई भी आपदा हमारा रिंचक मात्र भी नुकसान नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आकाश को हमने अपना मित्र बना लिया, उसके साथ हमने अपने संस्कार मिला लिए। इसी तरह अंतिम पांचवा तत्व तो कौन सा? सूर्य, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का प्रकृति के अंदर स्वरूप है सूर्य के रूप में। अग्नि में कौन सा विशेष गुण होता है? अग्नि का एक विशेष गुण होता है कि उसमें जो कोई चीज डाल दो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही बाबा ने कहा है कि आप सबकी भी इतना ज्वालामुखी अग्नि स्वरूप हो, ऐसे योग की ज्वाला जली हुई हो कि जो भी आत्मा आपके सम्मुख आए उसका रूप परिवर्तन हो जाए। रोती हुई आत्मा आए हंसती हुई जाए, दुखी आत्मा आए सुख के सागर में लहराती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए शांति का एकाग्र स्थिति का अनुभव करके चली जाए, उसका रूप बदल जाए। और वो कब होगा? जब हमने अग्नि तत्व का ये गुण धारण करा होगा, ये ज्वालामुखी जो बाबा योग कहता है वॉल्केनिक योग, ज्वालामुखी योग, ये अग्नि। और ये कब होगा? सूर्य की तरफ अगर आप अपना मुख करो ना तो हमारी परछाई पीछे रहती है, और सूर्य की तरफ अगर पीठ हो जाती है तो परछाई आगे आगे चलती है। तो सूर्य यानी ज्ञान सूर्य बाबा शिव बाबा की तरफ जितना हमारा मुख होगा, बाबा का याद होगा, तो ये परछाई यानी छाया माया कमजोरी जो है ये सब हमारे पीछे रहेंगी, ये हमारे ऊपर प्रभाव उसका नहीं आएगा इनका जितने ये कमी कमजोरियां हैं। लेकिन सूर्य की तरफ अगर हमारी पीठ हो गई ना तो क्या होगा, ये परछाइयां आगे, कमी कमजोरियां हमारी वीकनेसेस ये आगे आगे बढ़ करके हमारा मार्ग प्रदर्शन करती रहेंगी और हमें कमजोरियों की तरफ ढकेलती रहेंगी। तो इसलिए अभी आवश्यकता है कि सूर्य ज्ञान सूर्य की तरफ हमारे हमेशा हमारा मुख, और अंत समय में जब ये सब आत्माएं आएंगी ना तो क्या होगा कि बस आ करके हमसे जो भी इच्छा होगी, उस समय कहने का मार्जिन नहीं होगा, मानो हम तो एक ही हैं, हमारे सामने चार आए, चार अलग अलग भक्त हैं, एक हनुमान का, एक गणेश का, एक राम का, एक कृष्ण का, एक देवी का, आदि आदि, लेकिन वो आत्माएं हमारे सम्मुख आएंगी तो जो जैसा जिसका भक्त होगा शिव बाबा हमारे द्वारा उसको वो ही साक्षात्कार कराएगा, तभी तो उसे तृप्ति का, संतुष्टता का अनुभव होगा। हम सब ने सुना है, जीवन बाबा की जीवन कहानी पढ़ी है ना, कि बाबा का जीवन कहानी यज्ञ के शुरू में बहुत परिवार आते थे, एक परिवार सरदार सिख का आता था तो वो भाई ज्ञान में नहीं था लेकिन परिवार वाले ज्ञान में थे, तो भाई को अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार वो सिख सरदार जी ने सोचा कि मैं बाबा की हत्या कर दूंगा, मार दूंगा। तो वो छुरा लेकर के छिपा करके आया बाबा के पास और बहन से बोला मुझे बाबा जी से मिलना है। तो बहन ले गई बाबा के पास और बाबा के पास छोड़ के वो तो काम में चली गई। और वो और बाबा जब अकेले थे तो उसने देखा कि ये मौका अच्छा है, छुरा निकाला और बाबा के ऊपर वार करने जा ही रहा था तो उसे क्या साक्षात्कार हुआ, गुरु नानक देव जी का। अब बाबा कोई गुरु नानक देव की तो आत्मा थी नहीं, बाबा को से तो सबको साक्षात्कार जो होता था, कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का, स्वर्ग का, नई दुनिया का, सारे साक्षात्कार होते थे और सब उसी में लीन हो जाते थे। लेकिन शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का द्वारा उन सरदार जी को वो रूप दिखाया जिसमें उसकी भावना थी, गुरु नानक देव में उसकी भावना थी। तो जब जैसे ही उसने देखा बाबा को, गुरु नानक देव का, तो बस वो तो वायरा हो गया, आंखों से आंसू निकलने लगे, रोने लगा, क्षमा याचना, रे गुरु जी मैं तो आपकी हत्या करने जा रहा था, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, अधर्मी हूँ, मुझे माफ करो, ये करो, बहुत पश्चाताप करने लगा। और वहाँ छुरा बाबा के वहां रख के वो चला गया माफी मांगता हुआ। ऐसी बाबा अंत समय में हम बच्चों के द्वारा, हर भक्त आत्मा है जो द्वापर युग से हमारी भक्ति करेंगी, हमारी मूर्ति बना के पूजा करेंगी, वो उनको वो ही साक्षात्कार कराएगा जिसमें उनकी श्रद्धा होगी, भक्ति होगी। तो इस तरह ये पांच तत्व प्रकृति जीत हमें अगर बनना है ना, तो इन सब तत्वों के हम अपने अंदर गुण धारण करते जाएंगे, उनके स्वरूप बनते जाएंगे, तो ये तत्व जो है हमें कभी भी दुख देने का के निमित्त नहीं बनेंगे, हमारी मृत्यु का, शांति का, दुख का कारण नहीं बनेंगे और हम इस प्रकार से प्रकृति जीत बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।